हमने देखा शंकराचार्य जी ने कहा कि दुनिया का जो शोक है वो बिना आत्मज्ञान के नहीं जाएगा। अर्जुन शोकग्रस्त था, अर्जुन मोहित था, इसलिए भगवान ने उसका ये प्रश्न था कि मेरा अभी इस समय क्या कर्तव्य है, तो सीधा कर्तव्य नहीं बताते हैं कि तुम युद्ध करो, उन्होंने सीधा आत्मज्ञान शुरू किया, क्योंकि भगवान के हिसाब से दुनिया का शोक बिना आत्मज्ञान के कभी नहीं जाएगा। फिर भगवान आत्मज्ञान देना शुरू करते हैं, उन्होंने आत्मा की नित्यता को पकड़ा, एक एस्पेक्ट को पकड़ा, नित्यता, आत्मा नित्य है। आत्मा अगर नित्य है तो आत्मा की दृष्टि से शोक नहीं हो सकता, आत्मा का जन्म और मरण नहीं है, इसलिए उसके हिसाब से शोक नहीं बनता है। और अगर अर्जुन तुम मानते हो कि जीवात्मा करके कोई चीज है, तो बोले जीवात्मा की दृष्टि से भी शोक नहीं बनता, क्योंकि जीवात्मा भी एक शरीर से छोड़ के दूसरे शरीर में, दूसरे से छोड़ के तीसरे शरीर में चलता रहता है, उसकी यात्रा चलती रहती है, फिर इसमें शोक करने का क्या है। भगवान फिर एक और स्तर नीचे उतरते हैं और कहते हैं कि शरीर की दृष्टि से भी शोक नहीं बनता। भगवान वहां पर जन्म मरण नहीं कहते, भगवान ने क्या शब्द यूज किया, शरीर व्यक्त होता है, अव्यक्त होता है, पंच महाभूत से व्यक्त हुआ, फिर पंच महाभूत में अव्यक्त हो जाता है, और कहते हैं कि अव्यक्त अवस्था में ज्यादा दिन रहता है, तो वो आपका घर है, तो अगर ये सारे कौरव मारे जाएंगे तो कहां जा रहे हैं, अव्यक्त अवस्था में जा रहे हैं, अव्यक्त अवस्था अपने घर जा रहे हैं, फिर भी शोक नहीं बनता। फिर उन्होंने कहा शिष्टाचार के हिसाब से, बोले शिष्टाचार के हिसाब से तुमको करना चाहिए, स्वधर्म के हिसाब से, स्वधर्म के हिसाब से भी तुमको युद्ध करना चाहिए, अगर नहीं करोगे तब क्या होगा, उसके बाद में बातें आती हैं। तो यहां पर 30वें नंबर श्लोक में भगवान ने कहा देही नित्य अबतु हम, देही, देही कौन, जो भीतर में है, जो जीवात्मा है, जो आत्मा है, वो नित्य है, अबध्य है। क्यों अबध्य है, क्योंकि उसके पास में अवयव नहीं है, अंग नहीं है, और हमने देखा है जिस चीज के अंदर भी अंग होते हैं वो सब नाशवान है। तो भगवान के उसके अंदर आत्मा के अंग नहीं है, और नित्यत्वात वो नित्य है इसलिए वो अबद्ध है, उसको उसका हनन नहीं किया जा सकता, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए आप जो है शोक नहीं करो, शोक की कोई भी किसी भी तरीके से परिस्थिति बनती नहीं है। स्वधर्म अपि चावेच्छ न विकम्प तुम अर्हसि, स्वधर्म के हिसाब से भी तुमको नहीं कांपना चाहिए। क्यों? धर्म्याद युद्धत श्रेयो अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय आपका जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि आपकी पुरानी वासना आ रही है, वासना के अनुसार आपको शरीर मिलता है। हम लोगों ने BMI चार्ट में देखा है कि वासना के अनुसार आपको शरीर मिला। अगर आप क्षत्रिय कुल में जन्म लियो तो इसका मतलब आपकी वासना वैसी थी, और वासना के अनुसार अगर आपको परिस्थिति मिलती है उससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है। और उसके बाद ये युद्ध कैसा है? धर्म, धर्म के लिए ये युद्ध है। युद्ध जो है पांडवों के ऊपर थोपा गया था, पांडव युद्ध नहीं चाहते थे, भगवान कृष्ण भी युद्ध नहीं चाहते थे। कहते हैं धर्म युद्ध है, और क्षत्रिय से अन्यत इससे श्रेय इससे बढ़िया क्षत्रिय के लिए कुछ हो नहीं सकता। यदृच्छया चोपपन्नम, यह युद्ध अनआस्ट है, हमने नहीं चाहा था, हमारे ऊपर थोप दिया गया। स्वर्ग द्वार अपावृतम, स्वर्ग का द्वार जो है खुला हुआ है, वहां पर कोई गेटमैन नहीं है, कोई पूछेगा नहीं कि आईडी दिखाओ अंदर जाने के लिए। सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम, जो क्षत्रिय हैं उनको अगर ऐसा मिल जाए तो वो सुखी होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो अर्जुन तुमको भी खुश होकर युद्ध करना चाहिए। अब कहते हैं इस प्रकार कर्तव्य आपको, देखो यहां पर ये नहीं सोचना कि भाई हमारा कर्तव्य क्या हम जाके युद्ध करें, नहीं, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। ये संवाद कहां हो रहे हैं? संवाद सारे के सारे बैटलफील्ड में हो रहे हैं, युद्ध भूमि में हो रहे हैं। अर्जुन के कर्तव्य की चेतना की जा रही है कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। हमारा जो कर्तव्य है, अगर हम डॉक्टर हैं तो पेशेंट देखना हमारा कर्तव्य है, जो गृहिणी है उनका क्या कर्तव्य है, गृह कार्य देखना उनका काम है, हाउस होल्ड ड्यूटी उनकी काम है, जिसका जो ड्यूटी है वो उसके हिसाब से अपनी करो, कैसे करो वो बाद में बताएंगे हम, मगर आपको अपना कर्तव्य करना है, आप कर्तव्य से पीछे नहीं उठ सकते। हमने विवाह कर लिया, अब हम पति पत्नी को नहीं देखेंगे, पत्नी पति को नहीं देखेंगे, दोनों मिलके बच्चों को नहीं देखेंगे, ये नहीं बनता है। आपने विवाह किया तो कर्तव्य आपका बनता है, आप कर्तव्य करो अपना पूरा, यही आपका युद्ध है। बहुत अच्छा। अध चेतमिमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि, बोले ये संग्राम कैसा है, बोले युद्ध कैसा है, इसमें भी आपकी उन्नति होने वाली है। कैसी उन्नति होगी? अगर आपने जैसे भगवान कहेंगे ऐसे अगर युद्ध करेंगे, अगर वैसे ही अपनी ड्यूटी करेंगे तो आप इसके अंदर इवॉल्व होंगे। भगवान तरीका बताएंगे कैसे आप इवॉल्व होंगे, अपनी ड्यूटी करते हुए भी आप जो है स्पिरिचुअली इवॉल्व हो जाएंगे। तथा स्वधर्म कीर्ति चहित्वा पापम, अगर नहीं करोगे, अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? अगर स्वधर्म आपका जो है, जो आपने ड्यूटी अपने ऊपर दी है, भगवान ने जो ड्यूटी आपको दी है एज ए डॉक्टर, एज ए इंजीनियर, एज ए टीचर, एज ए लॉयर, एज ए स्वीपर, एज ए हाउस होल्डर, एज ए ब्राह्मण, एज ए क्षत्रिय, एज ए वैश्य, एज ए शूद्र, वो नहीं करोगे तो क्या होगा? स्वधर्म का पालन नहीं करोगे तो कीर्ति च हित्वा पापमवाशिषे, तो आपकी कीर्ति भी जाएगी, अपयश होगा, पाप मिलेगा। पाप मिलेगा मतलब वासना का क्षय नहीं होगा, यही पाप है। अगर आप अपना स्वधर्म नहीं करते हो तो आपकी वासना का क्षय नहीं होगा, और इस जन्म में हमको अपनी वासना, वासना को क्या कहते हैं, राग द्वेष, बहुत अच्छा, राग द्वेष अगर नहीं खत्म करेंगे फिर जन्म लेना होगा। तो उसको अगर क्षय करना है तो आपको अपना स्वधर्म पालन करना है। वो कहते हैं कि अगर नहीं करोगे तो कैसे कीर्ति, कीर्ति के ऊपर 3 श्लोक उन्होंने दिए हैं, कैसे कैसे कीर्ति आपका अपयश बढ़ेगा वो भगवान बताते हैं।
अकीर्तिम चापि भूतानि, अकीर्तिम चापि भूतानि, कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्, कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्, संभावितस्य चाकीर्तिः, संभावितस्य चाकीर्तिः, मरणादतिरिच्यते, मरणादतिरिच्यते, अकीर्तिं चापि भूतानि, कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्, संभावितस्य चाकीर्तिः, मरणादतिरिच्यते।
अकीर्तिम चापि भूतानि, भूतानि माने सर्वसाधारण। भगवान अब 3 स्तर पर कीर्ति का कैसे आपका नाश होगी वो बताते हैं। साधारण लोग क्या कहेंगे, जो तुम्हारे मित्र हैं, जो तुमसे प्रेम करते हैं वो क्या कहेंगे, और जो दुश्मन है वो क्या कहेंगे। तो 3 स्तर के लिए उन्होंने 3 श्लोक लिखे हैं। तो पहला भूतानि, भूतानि माने सब किस्म के प्राणी आ गए, उसमें देवता भी हैं, ऋषि भी है, मुनि भी है, पशु पक्षी सब आ गए। तो सर्वसाधारण का जो है उसके लिए ये श्लोक है, अकीर्तिं चापि भूतानि कथयन्ति, कहते रहेंगे बराबर। साधारण प्राणी बोले आपके पिता को इंद्र को आपने सहायता की थी, मगर जब वो ये सुनेंगे कि अर्जुन जो है मैदान से भाग गया तो वो भी अपकीर्ति हुई ना, अपयश ही हुआ। अच्छा बोले व्यास ऋषि वो भी तुम्हारी किताब में लिख देंगे, गीता में लिखेंगे कि वो ऐसा हो गया, वेरी गुड। बोले समस्त प्राणी पशु पक्षी बोले सब अपकीर्ति अपयश की बात करेंगे आपकी, बहुत अच्छा। देखो एक हिरण होता है उसका नाम है कबरीमान, कबरीमान, उसका अगर एक लोम गिर गया मर जाता, बोलत उसको लगता है कि हमारी कीर्ति खत्म हो गई। एक लोम गिरा, इतनी उसको अपने कीर्ति का भान है। अकीर्ति अव्ययाम, अव्ययाम यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं अव्ययाम का मतलब है दीर्घ कालाम, बहुत दिन तक चलता रहेगा वो अपकीर्ति। बोले कैसी कैसे चलती रहेगी, देखो रावण ने सीता हरण किया, कब किया था, किस युग में किया था, त्रेता में किया। अभी कौन सा युग चल रहा है, अभी केवल 5400 वर्ष हुए कलयुग में। कलयुग कितना बड़ा है, 432,000 वर्ष का कलयुग है, और हम अभी 5400 साल के अंदर ही परेशान हो गए, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग। इसके पहले क्या था, द्वापर, द्वापर की आयु कितनी होती है, उसका 2 गुना। इसीलिए देखो नाम है ना द्वा, थ्री टाइम्स, तो 432,000 अगर कलयुग है तो द्वापर कितना हुआ, 8,00,000। राम जी का जन्म किसमें हुआ था, द्वापर में कि त्रेता में। देखो आज भी आप याद करते हो ना सीता का अपहरण कितने सालों के बाद में, दीर्घ काल तक ये चलता रहेगा, अपयश जो है बहुत दीर्घ काल तक चलता रहता है। बहुत अच्छा, तो ठीक है, दुर्योधन की भी तो अकीर्ति थी मगर वो खुश था, मानो अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठा कि दुर्योधन तो सहज व्यक्ति नहीं था, उसकी भी तो अकीर्ति, तो वो तो खुश है, आप मेरे को क्यों कहते हो ऐसा। तो कहते हैं संभावितस्य, अर्जुन तुम संभावित हो, सम्यक भावित। आपने एक वर्ड सुना संभ्रांत, ये कहां के हैं भाई, ये संभ्रांत परिवार के हैं, प्रतिष्ठित परिवार के हैं, ये इज्जतदार व्यक्ति हैं, ऐसा कहते हैं ना संभ्रांत। सम्यक भ्रांत। अखंडानंद महाराज कहते हैं कि ये पहले सम्यक भावित था, भावित से आस्ते आस्ते भ्रांत हो गया। अब सब लोग संभ्रांत कहते हैं, संभावित वर्ड लोगों को पता ही नहीं है। संभावित वर्ड का मतलब होता है प्रतिष्ठित। कहते हैं संभावित, संभावित के लिए क्या है, बोले उसके ऊपर प्रतिष्ठित पुत्र के ऊपर अगर थोड़ा सा भी अगर दाग लग जाए ना प्रतिष्ठित व्यक्ति के ऊपर में, तो बहुत अपेस होता है। बोले अगर तुम यहां से चले गए और जाके बोलो कि क्षत्रिय हो श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन भीख मांगने चला गया, अपेस हो जाएगा। बहुत अच्छा, देखो युद्ध में जो पकड़े गए सिपाही होते हैं ना, प्रिजनर ऑफ वार, उसको मारते नहीं है कभी, आपने ख्याल किया होगा, उसको जीवित रखते हैं। अब वो सिपाही जो पकड़ा जाता है मरना चाहता है कि मेरे को मार दे तो ठीक है, मगर उसको जीवित रखते हैं क्योंकि उसको दुखी करना है। अपयस, बहुत अच्छा। देखो साधारण आदमी अगर गलती करे ना, 100 गलती हम नहीं उसकी नजर करते, मगर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति करते, प्रेसिडेंट निक्सन, बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक लोग याद रखेंगे। महाराज ट्रंप, प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक मिसस्टेटमेंट ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है। हम लोग 10 बार बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं पूछता है, मगर प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर एक बात कह दे। संभावित वर्ड जो है रामायण में भी आया है, संभावित कहूं अपजस लाहू मरण कोट इसम दारुण दाहू। बोले संभावित के लिए अपयस जो है ना मरण के बराबर है, उससे भी ज्यादा है बल्कि। बहुत को एक जगह और संभावित के बारे में लिखा गया है, न भी तो मरनादस्मि केवलम दूषितम यस, न भी तो मरनादस्मि, मुझे को मरने का डर नहीं है, मगर किस चीज का डर है, केवलम दूषितम यस, मेरा अपयस हो जाए, अकृति हो जाए, इसका मेरे को बहुत दुख है। विशुद्ध से ही मे मृत्यु पुत्र जन्म समह किला, विशुद्ध से ही मे मृत्यु, अगर किसी शुद्ध विशुद्ध आदमी की मृत्यु हो जाए, मतलब जिसका अपयस नहीं हुआ, यश के साथ कीर्ति के साथ प्रतिष्ठा के साथ अगर किसी की मृत्यु हो जाए, तो कहते हैं पुत्र जन्म समय के लिए, बोलो वो सुखी है। बोला कितना सुख है उसको, बोले पुत्र के जन्म होने से जितना सुख होता है ना। प्रतिष्ठित आदमी अगर अपनी कीर्ति के साथ में मृत्यु हो जाए तो इतना उसको सुख होता है जितना किसी व्यक्ति को पुत्र के जन्म से सुख होता है, इतना सुख होता है। अच्छा, जब जो है कोई प्रतिष्ठित आदमी या कोई भी आदमी, कोई भी नागरिक कोई गलत काम कर लेता है, तो आप लोग तो देखते हैं ना आजकल तो टीवी के अंदर सबका फोटो उतार लेते हैं, इसने ये किया है, इसने ये किया है, वो आदमी अपना चेहरा ढक लेता है, कहीं से टॉवल ले आता है, कहीं से कुछ ले आता है, अपना मुंह ढक लेता है, अपयस। अच्छा, दूसरे लोग क्या कहेंगे जो उनको प्यार करते हैं, तो दूसरे श्लोक में बताते हैं,
भयाद्रनादुपरतम् मन्स्यन्ते त्वामहारथाः, मन्स्यन्ते त्वामहारथाः, येषां च त्वं बहुमतः, येषां च त्वं बहुमतः, भूत्वा याससि लाघवम्, भूत्वा याससि लाघवम्, भयाद्रनादुपरतम् मन्स्यन्ते त्वामहारथाः, येषां च त्वं बहुमतः, भूत्वा याससि लाघवम्।
भयात् रणात् उपरतम्, अगर अर्जुन तुम भय के कारण इस रणभूमि से अगर भाग गए तो लोग क्या कहेंगे, डरपोक था, भाग गया। श्रेष्ठ धनुर्धारी डर के मारे भाग गया। मनस्यन्ते मत्स्यन्ते मन चिंतयन्ति चिंतयसिन्ति, अगर ऐसा सोच रहे हो तुम कि मैं यहां युद्ध भूमि छोड़ के भाग जाऊं तो लोग जो है तुम्हें डरपोक कहेंगे। भागने के कारण कोई तुमको नोबल पीस प्राइज नहीं देगा। हालांकि अर्जुन ने जितनी दलीलें दी थी कि मैं ये नहीं चाहता, मेरे को मार डालो, ये कर दो, वो कर दो, मगर मैं युद्ध नहीं करूंगा, मगर लोग तो ऐसा नहीं कहेंगे। लोग तो अपनी अपनी स्टोरी बनाएंगे, बोलेंगे डरपोक था, भाग गया। कौन कहेंगे, त्वाम महारथा। महारथा कौन है? भीष्म, द्रोण, सल्व, विराट, द्रुपद, सात्विकी। चैप्टर वन के अंदर श्लोक नंबर 4, 5, 6 के अंदर इन महारथों के नाम सब दिए हुए हैं। और अर्जुन भी महारथी था। तो जैसे हम लोग के अभी एक होता है ना ऑफिसर्स क्लब, एक होता है सोल्जियर्स क्लब, होता है ना, तो ये ऑफिसर्स क्लब की बात है। वो लोग ऑफिसर लोग क्या करेंगे, वो लोग तब एक स्टेटस के है ना, तो फिर बात करेंगे, देखो अर्जुन ऐसा था वैसा था, डरपोक निकला वो तो युद्ध भूमि के अंदर भाग गया महारथा। येषां च त्वं बहुमतः, वो तुमको बहुत मत जानते हैं। बहुमत का मतलब क्या है, यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं बहुभी गुणई युक्त इति बहुमत है। बोले तुम्हारे में बहुत गुण है, दे नो, तुम महारथी हो, तुम्हारे में क्या क्या गुण है वो लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मगर अभी भूत्वा यास्यसि लाघवम्, मगर तुम भाग जाओगे तो क्या करेंगे, तुम्हारी जो कीर्ति इतनी ऊंची है, तुम्हारे में जो इतने गुण हैं, और तुम डरपोक के भाग गए तो वो क्या हो गया, संभावित जो प्रतिष्ठित व्यक्ति था वो लाघवम हो गया। लाघवम मतलब ऑर्डिनरी पर्सन हो गया। संभावित जो प्रतिष्ठित था लाघवम, छोटा हो गया, एक जनरल पब्लिक की तरह, कॉमन मैन की तरह वो बन गया। भूत्वा यास्यसि लाघवम, और छोटे हो जाओगे, बहुत बढ़िया। फिर और जो हमारे दुश्मन हैं वो क्या कहेंगे, तो इसके पहले देखो क्षत्रिय को अपने युद्ध से भागना नहीं चाहिए, उसको अपनी वासना के क्षय के लिए युद्ध करना बहुत जरूरी है। अगर वो भाग जाएगा तो उसका अपयश दीर्घ काल तक चलता रहेगा, उसके ऊपर लोग कहानियां बनाते रहेंगे दुनिया किस्म की। आपका विचार, आपके पीछे जो भी हो, अर्जुन का विचार उसके पीछे जो भी हो कि मैं जो है युद्ध नहीं करना चाहता हूं ताकि इतनी विधवाएं हो जाएंगी, वो सब बहुत अच्छी अच्छी बात कही उसने, वो अर्जुन का विचार था, मगर समाज का विचार दूसरा होगा, हर व्यक्ति उसकी असेसमेंट अलग अलग करेगा। और जो कहानियां बनेंगी, सब कथाकार उसमें नमक मिर्ची अलग अलग बनाएंगे, लगाएंगे, लगा के कहानियां बनाएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ, वैसा हुआ।
अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः, वदिष्यन्ति तवाहिताः, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम्, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम्, ततो दुःखतरं नु किम्, ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम्, ततो दुःखतरं नु किम्।
देखो अवाच्य वादांश बहून वदिष्यन्ति तब अहिताः, अहिता मीन्स हिता मीन्स फ्रेंड, अहिता मीन्स शत्रु, दोज़ आर नॉट फ्रेंड। वो क्या कहेंगे, अवाच्य वादांश, जिसको हम बोल नहीं सकते, तो भगवान भी नहीं कहना चाहते, कैसी कैसी बातें करेंगे, कैसी कैसी बात हो ना, गालियां देंगे। भगवान जो है वो गालियां लिखना नहीं चाहते, अवाच्य मुंह से बोला नहीं जा सकता, ऐसी बातें वो लोग करेंगे। अवाच्य वादांश बहून, बोले बहुत किस्म की बनाएंगे वो, सब व्यक्ति अपनी अपनी एक कहानी बना के बता देगा कि उसका ऐसा हुआ, ये हुआ, वैसा हुआ। बदिष्यन्ति तवाहिता, और वही नहीं, निंदंती तब सामर्थ्यम, वो तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करेंगे, सामर्थ्य की निंदा कर देंगे। सामर्थ्य क्या है? बोले निवात कवच आदि युद्ध निमित्तम, तुमने निवात कवच आदि को युद्ध में हराया, तुम्हारे में इतनी शक्ति है, मगर वो तुमको निंदा करते रहेंगे। निंदंत, निंदंत मीन प्रेजेंट पार्टिसिपल, कंटिन्यूअसली दे विल गो ऑन डूइंग दिस थिंग। देखो जब निंदा कंटिन्यूअसली होती है ना, तब बड़ा दुख होता है। एक कोई आदमी, कोई म्यूजिशियन हो, वो बेचारा अपने हिसाब से बड़ा अच्छा उसने आलाप किया, उसके बाद में गाना गाया, और कोई आपको बोल दे कि आपने गाया तो अच्छा है, मगर आपकी आवाज जो है ना कौवे की तरह है, का 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 करती है। अगर ऐसा कह दे तो देखो म्यूजिशियन को कितना दुख होगा, होगा ना? उसकी सामर्थ्य देखो, और कोई उसको क्रिटिसाइज कर दे तो दुख होगा ना? उसी तरह से भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम्हारे में सामर्थ्य है, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा होगी। निंदंतस्तव सामर्थ्यम, तुम्हारे में जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, उसकी लोग निंदा करेंगे, और जब निंदा करेंगे तो तुमको क्रोध आएगा। अर्जुन की एक प्रतिज्ञा थी कि मेरे गांडीव का कोई अपमान करेगा तो उसको हम मृत्यु दंड देंगे। कोई अपमान कर देगा मेरे गांडीव का, मृत्यु, उससे कम नहीं। युद्ध के बाद में युधिष्ठिर ने उसके गांडीव का असम्मान किया, अब शशोपंज पड़ गया। हमने जो है ये प्रतिज्ञा की हुई है कि मेरे गांडीव का जो भी असम्मान करेगा उसको मृत्यु दंड, युधिष्ठिर ने किया, अब क्या करे? अर्जुन कृष्ण के पास गया, ये मेरी प्रतिज्ञा है, मैं क्या करूं? तो बोले तुम्हें काम करो, मन ही मन निंदा कर दो, मुझसे बोलना नहीं, क्योंकि निंदा जो है वो मृत्यु से भी ज्यादा है। प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा उसकी मृत्यु से भी ज्यादा बढ़ के है, तो तुम मन ही मन निंदा कर दो। अब बड़े भाई है, ओपनली भी निंदा नहीं कर सकते, बोलो मन ही मन निंदा कर दो, तुम्हारी प्रतिज्ञा भी रह गई, तुमने निंदा कर दी, और निंदा जो है प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु से भी बढ़कर है। निंदस्तव सामर्थन ततो दुख तरन नुकिम, बोले निंदा से बढ़ के उससे दुख, उससे भारी दुख क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। अच्छा फिर उसके बाद कहते हैं भगवान,
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्, जित्वा वा मोक्षसे महिम्, जित्वा वा मोक्षसे महिम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्, जित्वा वा वोक्ष्यसे महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः।
तस्मात्, जहां भी तस्मात् वर्ड गीता में आए आप समझ लेना कि एक निगमन, एक कंक्लूजन। भगवान कहते हैं ये तर्क देने के बाद में अब तुमको ये करना चाहिए, इसलिए तस्मान हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम, जित्वा वा भोच्यसे महीम। देखो चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 6 में अर्जुन ने कहा था यद्वा जयेम यदिवा ना जयेसु, मुझे मेरे को मालूम नहीं है कि मैं जीतूंगा कि मैं हार जाऊंगा, कि वे मेरे को जीत लेंगे, मेरे को ये मालूम नहीं है। अब यहां भगवान कहते हैं हतो वा प्राप्यसी स्वर्ग, अगर तुम मारे गए तुमको क्या मिलेगा? वीरगति, वीरगति मतलब स्वर्ग, सीधे स्वर्ग जाओगे। जित्वा वा भोज्यसे महीम, अगर जीत गए तो तुम राजा हो जाओगे, भोज्यसे महीम, चक्रवर्ती राजा। बहुत अच्छा। तो जीतवा किसके, किसको जीतना है? बोले कर्णादि सुरान भोज्य, कर्ण आदि जितने भी हैं। देखो कर्ण को, भीष्म पितामह को और द्रोणाचार्य को, अर्जुन को तीन चार आदमियों से भय था। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु थी, बाण मारते जाओ उनकी इच्छा, मरेंगे कि नहीं मरेंगे। कर्ण, कर्ण के पास भी कवच था। द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य उसके गुरु थे, उसको अर्जुन की वीकनेस मालूम है, कैसे अर्जुन को मारना है, उसकी वीकनेस कहां है उसको गुरु को पता है। तो इनको अगर जीत गए, इन सबको जीत के, अगर इन सबको हरा के तुम अगर बन गए राजा, तो फिर भोज्यसे महीम। भगवान ने तो दो ही कहा, फिर आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। अर्जुन के मन में प्रश्न आया, भगवान हार भी तो सकते हैं, आप तो कह रहे हो कि वे या तो जीत गए और या मारे गए, अगर प्रिजनर ऑफ वार हो गए तो इसके बारे में तो आपने नहीं बताया। महात्मा लोग ऐसा कहते हैं कि तुम्हारी मां मेरी बुआ है, ये मैं जानता हूं। दूसरा ये भी जान के रखो, जिस तरफ भगवान होते हैं उस तरफ कभी भी हार नहीं होती, इसलिए वो प्रश्न ही नहीं उठता हारने का। तो हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोज्यसे महीम, मारे गए स्वर्ग, जीत गए राज्य, दोनों हाथ में लड्डू, जो मर्जी हो जाए, दोनों ही अच्छी स्थिति है। तस्मात उत्तिष्ट कौन्तेय युद्ध कृत निश्चय, इसलिए अर्जुन तुम उत्तिष्ट कौन्तेय, तुम खड़े हो जाओ। कृत निश्चय, क्या निश्चय कर लें? जेष्यामी शत्रुन मरिष्यामी वा इति निश्चयम कृत्वा इत्यर्थ है, आइदर मैं इन लोगों को जीतूंगा और नहीं तो इनको मारूंगा, खत्म करके शत्रुओं को खत्म कर दूंगा और नहीं तो जीतूंगा, ये निश्चय करो। ये निश्चय करके उत्तिष्ठ, मैं या तो शत्रुओं को जीतूंगा या मर ही जाऊंगा, ऐसा निश्चय करके खड़ा हो जा। दो में से एक करना है, आइदर हम मारे जाएंगे नहीं तो हम जीतेंगे, ऐसा निश्चय करके तुम खड़े हो जाओ। अच्छा भगवान आप कहते तो खड़े हो जाते हैं, मगर थोड़ा तो कुछ बताओ तो, कैसे युद्ध करें, कुछ टिप्स दो कैसे युद्ध करें, कुछ हमें बताओ, क्या एटीट्यूड हो युद्ध करने के टाइम में, मेरा कर्तव्य कर्म है ना ये, अर्जुन का कर्तव्य कर्म है युद्ध करना, हमारा कर्म भी है, हमारे भी कर्तव्य कर्म है ना। तो जैसे जैसे भगवान अर्जुन के युद्ध के कर्तव्य कर्म के बारे में बताएंगे, वही चीजें हमारे अपने अपने कर्तव्य कर्म में लागू होंगी। आप ये याद रखना, हमको भी ये चीजें अपने जीवन में उतारनी है। क्योंकि संदर्भ युद्ध भूमि का है तो इसलिए भगवान युद्ध के हिसाब से बोलते जाएंगे, मगर हमको वही प्रिंसिपल्स, वही एटीट्यूड अपने जीवन में भी उतारने हैं, ताकि हम भी अपने कर्तव्य कर्म कर सकें। ठीक है, मेरा क्या भाव हो युद्ध के पीछे वो बताइए।
सुख दुखे समे कृत्वा,
सुख दुखे समे कृत्वा,
लाभा लाभो जया जयो,
लाभा लाभो जया जयो,
ततो युद्धाय युज्यस्व,
ततो युद्धाय युज्यस्व
नैवं पापमवाप्स्यसि
नैवं पापमवाप्स्यसि सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि।
युद्ध स्वधर्म है यह मानकर युद्ध करने वाले के लिए यह उपदेश है सुन। भगवान कहते हैं जिसका स्वधर्म युद्ध है, हमारा स्वधर्म युद्ध नहीं है, हमारा स्वधर्म अलग अलग है। यह मानकर युद्ध करने वाले के लिए यह उपदेश है, क्या है? तो तीन द्वंद यहां पर कहे हैं, देखो सुख दुख, लाभ अलाभ, जय अजय, तीन द्वंद कहे गए। और उसमें क्या करना है? समय कृत्वा, देखो इन तीन में रिलेशन है एक, सुख दुख लाभ अलाभ जया जयो। अगर आपको जय हो जाती है तो आपको लाभ होगा, लाभ होगा तो सुख होगा। देखो तीन वर्ड के अंदर कनेक्शन देख लो, सुख दुख, दूसरा है लाभ अलाभ, और तीसरा है जय अजय, इनका कनेक्शन है। आपकी जय हुई, आपका लाभ हुआ, आपको आपकी अजय हुई, पराजित हुए, आपका नुकसान हुआ, आपको बहुत को ठीक है। मतलब लाभ और हानि, जय पराजय, सुख दुख में भगवान कहते हैं सम रहो, समय कृत्वा। कैसे युद्ध करो? समय कृत्वा युद्धाय युज्यस्व, समय कृत्वा, पहले सम होना है। देखो यहां पर ये सम कैसे रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किस टाइम सम होना है? सम आपको कर्म करने के पहले होना है। कर्म करने के समय कम कर्म करते हुए सम नहीं हो सकते, कर्म फल पाने के समय में सम नहीं हो सकते। सम अगर आपको बनना है तो सम बनने का एकमात्र तरीका है कि आप कर्म के पहले सम हो, तभी वो आपका काम बनेगा, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं समय कृत्वा, पहले सम हो जाओ, फिर उसके बाद में युद्धाय युज्यस, उसके बाद में युद्ध में कूद जाओ। तो हमें भी अपने कर्तव्य करने के लिए पहले सम होना होगा। इसका मतलब क्या है? देखो कर्म जो है, कर्म फल जय या पराजय के लिए ना हो। हम जो कर्म करते हैं ना, वो हरदम लाभ नुकसान सुख दुख ये सब देख के करते हैं। भगवान कहते हैं कि नहीं, ये नहीं चीजें देखो, तुम सम रहो। वो किसकी प्रसन्नता के लिए हो? मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म होना चाहिए, क्योंकि भगवान सम है। कैसे भगवान सम है वो हम लोग देखते हैं अभी। अगर हम कर्म अपने लिए करें तो आप जब भी कर्म अपने लिए करोगे वो राग और द्वेष सहित होगा, राग और द्वेष रहित कभी नहीं होगा। अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कर्म हो, कोई अलग कर्म नहीं बताया। देखो अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, कोई स्पेसिफिक उनको मंत्र नहीं दिया, केवल ये बता रहे हैं कि आप युद्ध करने के समय में आप ये सोचो कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध कर रहे हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं। हमारे जितने भी कर्म होते हैं यही गड़बड़ी है, अपनी प्रसन्नता में अपने राग और द्वेष, अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स के हिसाब से हम कर्म करते हैं। आपको हम बोले आओ चिन्मय मिशन में, हमारा श्राइन हर हफ्ते वैकुम करो, आपका राग द्वेष आ जाएगा, आपको करने नहीं देगा। और जैसे ही आप भगवान की प्रसन्नता को ले आओगे बीच में, जैसे ही भगवान की प्रसन्नता लाओगे, अपने आप से प्रश्न करो, क्या श्राइन में वैकुम करने से भगवान राधा कृष्ण प्रसन्न होंगे? क्या उत्तर मिलेगा? अगर वो अपने ऊपर ले लो, अपने राग द्वेष के हिसाब से, भगवान की प्रसन्नता के नहीं, मेरी प्रसन्नता के लिए, क्या मैं प्रसन्न होऊंगा? ना, कौन खटेगा एक घंटा जाके? प्रसन्नता के लिए करो। ईश्वर के लिए अगर हम कर्म करेंगे तो वो समता बनी रहेगी, अपने लिए करेंगे तो समता कभी नहीं बनी रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है, भगवान कहते हैं कि अपने हर कर्म के पीछे ईश्वर को लाओ। अभी आपके कर्म के पीछे ईश्वर नहीं है, आपके कर्म के पीछे आपका अपना अहंकार है। हम अपने अहंकार को तुष्ट करने के लिए, उसको सुखी करने के लिए कर्म करते हैं। भगवान कहते हैं कर्म वही करो, केवल अभी जो वर्शिप ऑफ ईगो कर रहे हो उसके बदले वर्शिप ऑफ लॉर्ड करो। आप पढ़ाते हो या स्टोर में काम करते हो कि जो भी करते हो, घर में काम करते हो, वही काम करो, मगर वो हमारी अपनी ईगो वर्शिप के लिए ना होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। बस इतना ही आपको काम करना है। तो ये समता देखो कोई स्थूल वस्तु नहीं है, समता बहुत सूक्ष्म है और ये मस्तिष्क के लेवल पर होगी। ये आपको यहां फिट करना है समता बहुत को। तो समता करना भी एक साधना है, ये साधना है, आपको साधनाएं लेनी पड़ेगी। तो इस भाव से कर्म करो, भगवान हमने अपनी तरफ से जो करना था कर दिया, अब आगे आपकी इच्छा। इसमें मेरा अपना स्वार्थ नहीं है, आई एम नॉट वर्शिपिंग माई ईगो। मेरे को जो करना था मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर दिया। हमारे गुरुदेव कहते थे डू योर बेस्ट, छोड़ दो, मैंने अपनी तरफ से पूरा कर दिया। दूसरी बात, भगवान देखो हमारा कर्म नहीं लेते, भगवान क्या लेंगे? मेरा उसके पीछे जो भाव है केवल उसी को लेंगे, आपके कर्म को नहीं लेंगे ना कर्म फल को लेंगे, केवल उसके पीछे आपका जो भाव था वो भाव को ले लेंगे। क्योंकि भगवान जो है वो कर्म में इंटरेस्टेड नहीं है, उनको नहीं चाहिए कर्म। आप जो पुष्प चढ़ाते हो भगवान को माला नहीं चाहिए जो कल सूख जाएगी, भगवान उस भाव को लेंगे जिस भाव से आपने माला चढ़ाई है। देखो कर्म सीमित हैं, लिमिटेड इन टाइम एंड स्पेस है, मगर भगवान वैसे नहीं है। तो ये समत्व कब हो सकता है? बोले जब आप भगवान को प्यार करना शुरू करोगे, उसमें भक्ति रखोगे, भगवान के साथ में प्रेम करोगे, वो प्रेम जो है भगवान लेंगे और कुछ नहीं लेंगे आपसे। जब आप ये प्रेम आपके मन में आ जाएगा, अब आप हमको ये बताओ कि आपका मन शुद्ध होगा कि नहीं। जब तक आपके मन में कार्य के पीछे आपका राग द्वेष रहेगा तब तक आपका मन इम्प्योर रहेगा, शुद्ध रहेगा। जैसे ही कार्य के पीछे, कर्म के पीछे में अगर भक्ति आ गई, भगवान आ गए पीछे में, उनके प्रति प्रेम आ गया, अब बताओ क्या होगा? अब आपका मन शुद्ध होगा। हमको काम क्या करना है? हमको अपना मन शुद्ध करना है। क्यों मन शुद्ध करना है? क्योंकि हमारे पास वासना है, हमारे पास में छह हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य बैठे हुए हैं, हमको इनको हटाना है। तो ये कैसे हटेंगे? जब तक भगवान आपके जीवन में नहीं आएंगे तब तक ये हटने वाले नहीं है। या तो आप सीधे रास्ते आके भक्ति मार्ग में आओ, पूजा करो। मैं कहने वाला हूँ हमारी पूजा आने वाली है 27 तारीख को। या तो सीधा पूजा में आओ, वहां पर आके बैठो, पूजा करो, नहीं तो कर्म करो। किसी तरीके से भगवान को अपने जीवन में लाना है। साकाम कर्म के अंदर भगवान आपके जीवन में नहीं है। कर्म योग के हिसाब से भगवान आपके जीवन में ईश्वर आता है। तो भाव क्या होना चाहिए? भाव ये होना चाहिए कर्म के पीछे कि ये सारे कर्म हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। खाता हमने कर दिया अपना काम, बहुत अच्छा। अपने कर्तव्य को अपना कर्म समझ के लो, उसके ऊपर अच्छा और बुरा मत थोपो। भगवान ने जो आपको कर्तव्य दिए हैं उसको अपना कर्तव्य पकड़ के ईश्वर की प्रसन्नता के हिसाब से उसको करते जाओ, उसके ऊपर अच्छा बुरा मत थोपो। कैसे कम हम कर्तव्य कर्म करें? तो बोलते हैं देखो पोस्टमैन आता है ना, कितने किस्म की पोस्ट लेके आता है। किसी की पोस्ट में अपॉइंटमेंट लेटर है, किसी की पोस्ट के अंदर डेथ न्यूज है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। पोस्टमैन क्या उससे अफेक्टेड होता है? पोस्टमैन का कर्तव्य कर्म क्या है? बांटना चिट्ठियां, जिसकी जिसकी है उसको बांट दिया, मगर वो सम है। मगर हम क्या सम रहते हैं? हम सम नहीं रहते। गुरुजी हम लोग को कहते थे वेदांत कोर्स के बाद में, गुरु ने कह दिया करो, प्रश्न नहीं करना एकदम, जो कह दिया करो बस। क्योंकि गुरु हमारे हमारा विकास ही तो चाहते हैं, हमारी उन्नति चाहते हैं। उन्होंने जो कह दिया करो, वो हमारा स्वार्थ जानते हैं, हम कहां पर खड़े हुए हैं और हमको क्या करना है वो जानते हैं। उसके हिसाब से हमको काम दे दिया, बोले जाओ करो। देखो आप लोग के घर में वजन मशीन होती है ना, वेइंग स्केल, मोस्टली कहां रहती है? बाथरूम्स के अंदर, ताकि आपका शुद्ध वजन आपको पता लग जाए। अच्छा उसका कांटा देखा आपने? सबसे आप सबसे पहले कांटा देखते जीरो पर है कि नहीं, है ना? थोड़ा सा अगर प्लस टाइप हो जाएगा तो फिर आपका वजन बढ़ जाएगा, उसको आप जीरो पर लाते हो ना। उसी तरह से अपने माइंड को जीरो पर लाओ। माइंड को जीरो पर लाओ मतलब राग द्वेष को जीरो पर कर दो। जब तक ये राग द्वेष रहेंगे ना तब तक आपको गोलमाल चलता रहेगा। राग द्वेष की जगह ईश्वर को बैठाना है। बहुत अच्छा। देखो कंपनी मीटिंग्स जब होती है ना तो उसके एक एजेंडा आते हैं। हमारे हम लोग की बोर्ड मीटिंग होती है तो कभी कभी एजेंडा आता है, आता ना। हम लोग की टीचर्स मीटिंग होती है, एक एजेंडा आता है, ये आज डिस्कशन कर रहा है, एजेंडा आ गया। अच्छा देखो कुछ लोग होते हैं ना बोर्ड वाले, कमेटी वाले, वो पहले ही ना कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, उसके जो है प्लस माइनस उसका डिस्कशन करके आते हैं, हैं? वो आके अब उनका दिमाग जो है ऑलरेडी थोड़ा सा झुक चुका है, एक तरफ झुकाव हो चुका है उनका। गुरुजी जब मीटिंग करते हैं, मैं गुरुजी कहते हैं मेरे, मैं कहता हूं कि मेरे को कोई आदमी आगे आके कुछ नहीं बोलेगा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं। मैं निरपेक्ष भाव से बैठूंगा, एजेंडा मेरे सामने रखो, जिसको जिसको जो जो कहना है उसके हिसाब से मैं फिर डिसीजन लूंगा। पहले से कह देंगे तो क्या होगा? राग द्वेष, ये ठीक है ये गलत है, आ गया ना। राग द्वेष रहित करो तो जीत हार अर्जुन तुम छोड़ दो, तुम अपना स्वधर्म करो। स्वधर्म करने का तरीका क्या है? कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। कैसे कार्य होगा? ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करेंगे, नेच्छया अपनी इच्छा के लिए नहीं। निश्चयाकृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधन, चित्त शोधकम, उससे आपका माइंड क्या होगा? प्योर होगा। आप प्योर माइंड मुक्ति का दरवाजा है, आपको मुक्ति मिलेगी। तो यहां पर कहते हैं ततो युद्धाय युजस नैवम पापम अवाप्स्यसि, आपको पाप नहीं मिलेगा अगर इस तरह से तुम करोगे तो, पाप नहीं होगा। अच्छा, पाप का यहां मतलब ये नहीं कि कोई आप कोई गलत काम कर रहे हो, ऐसा नहीं। पाप का मतलब जो है कि आपकी वासना नहीं बढ़ेगी, मन शुद्ध होता जाएगा। कैसे मन शुद्ध होगा? जो भी काम हम करते हैं वो ही करेंगे, मगर क्या सोच होनी चाहिए, किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए नहीं, भगवान की। अगर भगवान के लिए कर रहे हैं तो फिर गलत काम होना शुरू हो जाएगा। हमने झूठ बोला, भगवान के लिए बोला हमको, नहीं वैसा नहीं। प्रसन्नता वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, अगर ऐसा होगा तो आपसे कोई गलत काम नहीं होगा। आप गलत काम करने जाओगे, गलत काम, अच्छा चलो आज हम उनकी चुगली इनसे करेंगे, भगवान क्या प्रसन्न होंगे? अब नहीं होगा, आपसे देखो चुगली बंद होगी आपकी। हम झूठ बोलेंगे, क्यों नहीं सत्संग में आए? अच्छा कुछ कह देते हैं उल्टा सीधा, बात कुछ और थी, सत्संग नहीं गए थे हम तो, दुसंग गए थे हम तो, पब गए थे, तो आप कैसे बोले पब गए थे, कुछ और कह देते हैं। अच्छा वो गलत काम कहने से, गलत बात कहने से क्या भगवान प्रसन्न होंगे? नहीं, तो आप झूठ भी नहीं बोलोगे। अच्छा मैं काम अपने लिए कर रहा हूं, अगर इसके पीछे का विज्ञान आपको समझ में आ जाएगा ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है हमें। अब ये सोचो कि मैं अपनी प्रसन्नता के लिए काम कर रहा हूं, क्या भगवान प्रसन्न होंगे? जब तक झूठ था तब तक आप बोले कि नहीं ठीक है। हमने पहले ही आपको कहा था कि एक भावना भगवान बताना चाह रहे हैं कि मेरे लिए कर्म करो तुम। अगर भगवान के लिए कर्म नहीं करके, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करके, मैं अपनी प्रसन्नता के लिए कर्म करता हूं, वर्शिपिंग माई ओन ईगो, विल द लॉर्ड बी हैप्पी? बस अगर आप इतना समझ गए, अगर ये विज्ञान ठीक से पकड़ लिया, इस रास्ते पर अगर चलना शुरू करती है, मुक्ति गारंटेड है। अगर विज्ञान आपने समझ लिया है तो मुक्ति गारंटेड है, मगर चलना होगा इस रास्ते पर। कोई नया काम करना है आपको, स्टूडेंट को पढ़ना है, गृहिणी को घर का काम करना है, प्रमिला अम्मा को गाना सिखाना है, जिनका जो काम है वो ही करते रहेंगे, मगर क्या सोचेंगे, ये काम मैं भगवान के प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। प्रसन्नता, प्रसन्नता भगवान के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता। अब अगर उसकी जगह अपनी प्रसन्नता के लिए काम करना शुरू करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे? नहीं। बस इतना अगर आपने समझ लिया तो बहुत समझ लिया आपने। ये है गीता के ज्ञान। नैवम पापम अवाप्स्यसि, तुमको जो है पाप नहीं लगेगा। सो अर्जुन, विजय अथवा लाभ इन सब के लिए युद्ध नहीं करो, युद्ध किसके लिए करो? मेरे लिए करो, इससे मन तुम्हारा शुद्ध होगा। देखो गांधी जी भी साधक थे, उन्होंने कहा सारा स्वतंत्रता संग्राम मेरी मन की शुद्धि के लिए है, ऐसा गांधी जी कहते थे। तिलक क्या कहते थे? किसी बच्चे ने पूछा भाई आपके देवता हैं, बोला हाँ मेरे भी देवी देवता हैं। बोले कौन है? बोले ये सारी भारतीय जनता जो है ये मेरे देवी देवता हैं, मैं इनकी पूजा करता हूँ, इनको सेवा करता हूँ। भगत सिंह हिंसा के ऊपर थे और गांधी जी अहिंसा, मगर दोनों का लक्ष्य एक ही था। देखो राम जी को भी जब वनवास हुआ उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया, चलो भाई ठीक है। तो समरी क्या है? तो समरी ये है कि अपने कर्तव्य कर्म आप करो, कर्म योग की तरह, अपनी खुशी के लिए नहीं भगवान की खुशी के लिए करो, और जो प्रसाद हो, जो कर्म फल आए उसको प्रसाद के रूप में। क्यों प्रसाद के रूप में लें? क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमें क्या फ्यूचर में चाहिए, भविष्य में क्या चाहिए। हम भगवान के पास में जाके चाहते हैं बहुत कुछ, हमको अपना भविष्य नहीं मालूम है क्या आने वाला है अभी, मगर भगवान जो हमको देते हैं उसको स्वीकार करो, उसको प्रसाद की तरह ले लो। अगर इस तरह से करोगे, देखो कर्म अगर साकाम कर्म करोगे ना तो वो लाभ कितने दिन के लिए आएगा? तुरंत लाभ आया, मगर वासना, वासना दीर्घ काल तक चलती है, इसको समझ लो। साकाम कर्म का फल तुरंत मिलता है, वो नष्ट भी हो जाता है कर्म, मगर उसकी जो वासना जो बनी, उसकी जो टेंडेंसी जो बनी, उसका जो इंप्रेशन बना, उसका जो लाइक्स डिसलाइक्स बना, इट स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। और उसके बाद उसके हिसाब से आप फिर कर्म करते हो, उस कर्म को फिर करते जाओगे। तो जितनी आप वासना बढ़ाओगे आप भगवान से उतने दूर होते जाओगे, और जितनी वासना कम करोगे भगवान के उतने नजदीक होते जाओगे। तो कर्म क्यों, कर्म योग क्या हुआ? बोला कर्म योग इज अ वैक्यूम क्लीनर, इट क्लीन्स योर माइंड। जितने भी आपका जो है गंदगी है सब निकाल लेता है। कौन सी गंदगी? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सब निकल जाएगा। बहुत अच्छा, अब आप लोगों ने तो अच्छी तरह समझ लिया है कि आपको करना क्या है। तो समय सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवस्थिति। अब भगवान कहते हैं कि देखो हमने तुमको सांख्य के बारे में जो कहना था वो हमने कह दिया, अब हम आपको दूसरा कुछ बताने जाएंगे। वो क्या बताएंगे वो हम अगली कक्षा में देखेंगे, और ये बड़ा स्लिपरी श्लोक है, इसको ठीक से समझ लेना, क्योंकि अर्जुन इस श्लोक में स्लिप कर गया, और स्लिप करने के कारण तीसरे अध्याय में उसने जो प्रश्न किया था वो 39वां श्लोक ठीक से नहीं समझने के कारण किया। तो इस श्लोक को हम अच्छी तरह से अगले दिन देखेंगे। तो आप अच्छा ठीक है, ओ अच्छा 27 तारीख को हमारे चिन्मय मिशन में मूर्ति स्थापना दिवस है, उस दिन पूजा होगी। अब मुझे ये बताइए कि उस पूजा में भाग लेने से भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? अगर होंगे तो आप सबको आना है, और हमने उपदेशार में पहले ही सीखा है, पहले हम जानते हैं कि स्पिरिचुअल साधना का पहला स्टेप पूजा है। पहले शुरू करते हैं मूर्ति पूजा से, उसके बाद में फिर हम अष्टमूर्तिविद देव पूजनम, फिर सारे जगत की पूजा हम करेंगे, ऐसा विजन हमको आस्ते 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 बढ़ाना है। अब गीता आप लोग पढ़ते हो तो साथ साथ साधना भी करनी होगी, पहला स्टेप भी लेना होगा कि खाली आप यहीं रखना चाहते हो? नहीं रखना चाहते हो ना, तो आप 27 तारीख को आप लोग आके पूजा में शामिल होइए। और अशोक जी ने तो व्यवस्था भी की है, आपको वहाँ नहीं जाना है, पता नहीं क्या कंप्यूटर में ही बोलते हैं क्या, वहीं से डायरेक्ट वहीं से कर लो, रजिस्टर हो जाता है क्या, स्पॉन्सर हो जाता है।
हाँ हाँ, वो आप उसे रजिस्टर कर सकते हैं पूजा के लिए, आप आ जाइए वहाँ पे, लेकिन पहले से थोड़ा एडवांस में आप अगर
व्यवस्था में सुविधा हो जाएगी।
स्पॉन्सर कौन कर रहे हैं तो फिर
पूजा कितने बजे?
2 बजे
स्पॉन्सर सब रकम असिस्ट।
अब बहुत किस्म की स्पॉन्सर है, आप मुख्य यजमान बनना चाहते हैं या ऐसे ही स्पॉन्सर करना चाहते हैं, अन्नदान करना चाहते हैं, जो भी चाहे कीजिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, जितना भी करें वो कम है। हरिओम।